نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير كل نفس ذائقة الموت ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. سورۃ آل عمران آیت 185 کا کچھ ٹکڑا ہم سب کے سامنے ہے اور یہ حصہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک ایسے سفر کی طرف رواں دواں ہے کہ جہاں سے کبھی کوئی واپس نہیں آیا. اس دنیا سے آخرت کا سفر ون وے ہے, کوئی یو ٹرن نہیں ہے, کوئی ریٹرن کا سائن نہیں ہے. ہم سب نے اپنے زندگی کے ہر دن کے ساتھ ساتھ ایک ایسی دنیا میں چلے جانا ہے کہ جو دنیا اس دنیا سے بہت مختلف ہوگی. ہم اس دنیا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ صرف سفر ہی کرنا چاہیں تو کتنی چیزوں کو تیار کرتے ہیں, سامان بھی ہے, ٹکٹ بھی ہے, پاسپورٹ بھی ہے. آپ میں جو لوگ سفر کرتے رہتے ہیں وہ ان ساری چیزوں سے خوب اچھی طرح آگاہ ہیں. کبھی ایک دفعہ بھی کیا تو بھی پتہ ہوگا. کیا ہم نے اس آخری سفر کے لیے تیاری کر لی ہے؟ بس اگر آپ بیٹھی ہوں اور ایک دم کوئی آپ سے پوچھے کہ آنٹی آپ نے سفر کی تیاری کر لی ہے, تو آپ ایک دم پوچھیں گی کہاں جا رہی ہوں, میں کدھر جا رہی ہوں. ہو سکتا ہے آپ عمرے پہ جا رہی ہوں, حج پہ جا رہی ہوں, ہو سکتا ہے آپ کہیں گھومنے جا رہے ہوں. لفظ سفر کے ساتھ ہی ایک دم بے چینی, گھبراہٹ اور تیاری نہ ہونے کا احساس پیدا ہوتا ہے. نہیں نہیں ابھی تیار نہیں, نہیں ابھی نہ آنا, ابھی تھوڑی دیر ہے. پھر آپ سفر میں ہو کوئی تو فون کریں آپ کدھر ہیں, وہ کہتے ہیں نکل آئے ہیں گھر سے. اب کدھر ہیں؟ ایک گھنٹہ دور ہے. اچھا اب کدھر ہیں؟ آدھا گھنٹہ. اب بس پانچ منٹ. اب تو ایک ایک منٹ کے نیویگیٹرز ہیں نا, اور اب تو جو لوکیشن شیئرنگ کی ایک ایپ آ گئی تو آپ میری لوکیشن میں آپ کی لے لیں, سارا دن دیکھتے رہیں آپ کدھر ہیں میں کدھر ہوں. اب تو بندوں کو لوکیٹ کر کے ہم کہیں پہنچتے ہیں. یہ جگہیں, بلڈنگ, یہ سب ختم ہو جائیں گے ایک وقت آئے گا, یاد رکھیے. یا آپ کے گھروں کے ایڈریس میرے باہر, یہ ختم ہو جائے گا, ضرورت ہی نہیں رہے گی. ہر بندہ اپنی ذات میں تنہا ہے, اور آج دیکھ لیجئے جتنا افراد کو اکیلا کر دیا گیا, آئسولیٹڈ ہے, گھر میں بیٹھے دو لوگ نہیں جانتے کہ دوسرا گھر میں ہے بھی کہ نہیں ہے. تو یہ ایک ایسی دنیا کی طرف آپ کو مجھے بھیجا جا رہا ہے کہ جہاں تنہائی ہے. اللہ نے تو سورۃ الانعام میں پہلے سے کہہ دیا تھا کہ لوگو تم تنہا تنہا ہمارے پاس آ رہے ہو جیسے تم اس دنیا میں تنہا آئے تھے. تو آئیے ذرا سی ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کی تیاری کر لیں. کوئی بھی کام جب اس کی تیاری کر لی جاتی ہے تو وہ نہ صرف یہ ہے کہ اچھا بلکہ پسندیدہ ہو جاتا ہے. آپ تیاری کر لیں اور پھر مہمان نہ آئیں تو آپ کہتے ہیں کیوں نہیں آ رہے, کھانا تو ٹھنڈا ہو رہا ہے, دم تو زیادہ چڑھ جائے گا. اور اگر آپ نے تیاری نہ کی ہو تو آپ ہول رہے ہوں گے, ابھی نہ آئیں, ابھی نہ آئیں, ہائے ابھی جلدی نہ آئیں. تو اگر میں نے آپ نے اس آخری سفر کی تیاری کر لی تو انشاءاللہ موت کے فرشتے کو دیکھ کر یہ نہیں کہیں گے ہائے ہائے یہ کہاں سے آ گیا, ابھی کیوں آ گیا, ابھی تو میں نے اس کو نہیں بلایا تھا. اور اگر ہم سب تیاریاں کر کے بیٹھے ہوں گے, سامانوں کی گٹلیاں لپیٹ کے بیٹھے ہوں گے, تو انشاءاللہ موت کے فرشتے کو دیکھ کر خوشیاں منائیں گے اور ہماری روح ایسے اچھل کے گاڑی میں بیٹھے گی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربی کی راضیہ مرضیہ. ٹھیک ہے, ایک کارڈ ہے آپ کے سامنے, آپ کے لیے اسپیشل منگوایا گیا ہے. اللہ کرے کہ یہ ہم سب کے حق میں حجت بنے. آئیے ذرا اس کو فالو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ آخری سفر کی تیاری کے لیے دعائیں اور اذکار کیا ہیں, کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم سب کے بہت فائدے کی ہیں. سب سے پہلے کیا ہے, اپنی موت کی تیاری کے لیے دعائیں اور اقدامات. اقدامات کیا ہوتے ہیں؟ قدم سے, وقت سے پہلے کوئی کام کر لینا. ٹھیک ہے, حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی فکر کریں. چلیے, میں اور آپ اپنے کندھوں پہ دو قسم کے حقوق لیے بیٹھے ہیں, ایک اللہ کے اور ایک بندوں کے. آپ نے بچپن سے یہ دو لفظ سنے ہوں گے, اللہ کے حق اور بندوں کے حق. اور کچھ کیا کہتے ہیں, میں زیادہ ریلیجس نہیں ہوں کیونکہ میں بندوں کے تعلق کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں. تو کس نے بتایا کہ بندوں کے حق ادا کرو, کس نے بتایا کہ ماں باپ کا کیا حق ہے؟ تو چلیے, آپ اور میں اس وقت اس کی ڈیٹیلز تو نہیں لے رہے, لیکن چند جملوں میں اپنا محاسبہ تو ضرور کر سکتے ہیں نا. پہلی بات یہ کہ اللہ کے حقوق کون سے ہیں. لا الہ الا اللہ, جن لوگوں نے اسلام A to Z کورس کیا ہمارے ساتھ वो सारी बातें उनको अब याद आ जाएंगी जो हमने उसके शुरू के पहले डे में की थी कि हम सब पर सबसे पहला हक़ अल्लाह का है, कि हम उसके साथ किसी को शरीक ना करें, हमारे और अल्लाह के बीच में किसी दूसरे का तसव्वुर ना हो। और फिर अल्लाह के हकूक़ में से ये एक हक़ है कि अल्लाह के भेजे हुए नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएं, और ईमान लाने के साथ साथ फिर हम उनकी ज़िंदगी जो उन्होंने हमें बताया, जो पैगामात दे कर गए, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें। तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मेरा हक पूरा है बराबर? क्या मैंने आपकी ज़िंदगी की पूरी कहानी पढ़ ली जिसको सीरत कहते हैं? क्या मैंने आपके मुँह से बोले हुए मीठे बोल सुन लिए, हदीसें याद कर ली? कितना जानती हूँ मैं अपने नबी को? और सबसे बड़ी बात, मेरी ज़िंदगी नबी की ज़िंदगी से कितनी मिलती है? और आखिरी बात, नबी के नाते से क्या नबी का मिशन जिस पर उन्होंने सारी ज़िंदगी लगा दी, क्या वही मेरा भी मिशन है? बस इसके मुतल्लिक हम ताल्लुक़ बिर रसूल देखते जाएँ, डिटेल्स बहुत सारी हैं, बाद में मांगेंगे, एक एक के ऊपर आपको पूरी पूरी सीरीज़ रिकमेंड कर दूँगी कि अल्लाह के हक़ कैसे और नबी का हक़ कैसे। अल्लाह के हकूक़ में से तीसरी चीज़ हैं फ़राइज़, जो उसने हम पे डाले। 5 वक्त की नमाज, साल के रोज़े जिसमें 29 या 30 जो माल एक साल तक रहे आपके मेरे पास, उस पे 2.5% ज़कात, 2.5%। फिर इस्तेतात मौजूद है तो हज एक दफ़ा ज़िंदगी में, और इसके बाद अल्लाह का हर हुक्म क़ुरान की सूरत में है, शरीयत में जो है, अल्लाह की भेजी हुई किताब, ये सब अल्लाह के हक़ हैं। क्या हमने अल्लाह की दी हुई इस किताब को एक दफ़ा अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह समझ के पढ़ लिया? ये भी अल्लाह का हक़ है। ये कैसे हो सकता है कि आप और मैं मोहब्बत के दावे तो करें लेकिन अमल कर ना पा सकें? तो ये आपने मैंने ख़ुद से पूछना है। मैं चंद जुमले बोल देती हूँ सिर्फ सोचने के अंदाज से, क्या मैंने अल्लाह के हकूक़ अदा कर दिए? कहीं मैं अल्लाह के साथ किसी को शरीक तो नहीं बनाती? कहीं मैं अल्लाह के भेजे हुए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लिए एक उसवा हसना बनाने की बजाय सिर्फ़ एक हीरो समझ के तो नहीं पूछती? क्या मैं आपके साथ सिर्फ मोहब्बत के दावे ही तो नहीं करती? क्या मेरी ज़िंदगी में अल्लाह के नबी की मोहब्बत की सारी अलामतें और दूसरी चीज़ें मौजूद हैं? और इसी तरह से क्या 5 वक्त की नमाज़ पूरी अदा करती? मेरी कोई नमाज़ छूटती तो नहीं है? क्या मेरे रोज़े जो छूट जाते हैं कुछ अल्लाह के हुक्म से, अगले साल से पहले पूरे कर लेती हूँ? क्या अपने माल पर इस साल तक की पूरी पिछली वाजिबुल अदा ज़कात अदा कर चुकी हूँ? क्या मैं हज कर चुकी हूँ? और क्या मेरी ज़िंदगी में इस अल्लाह की किताब को समझने और सीखने की ख्वाहिश पैदा हो चुकी है? और इसी में तीसरी चीज़ है कि अपने मरने के बाद पर ईमान, कि मरने के बाद मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा दरवाज़ा खुल जाएगा जिसका अगर अल्लाह के नबी ने हमें ना बताया होता तो हमारे लिए तो मौत एक डेड एंड था, एक ऐसी दीवार जिसके पार हमें नहीं पता क्या। अपने हाथ से मुर्दों को दफनाते हैं और घर आते हैं और फिर खाने खाते हैं, फिर उसको कशोर मच जाता है कि पुलाव है कि बिरयानी है और क्या है, और कानों में बातें शुरू हो जाती हैं, क्या छोड़ के गए, अम्मी की चूड़ियाँ कौन लेगा, और अब्बा की गाड़ी किसको मिलेगी, क्या छोड़ गया कितने, और बैठे बैठे 3 दिनों में रिश्ते नाते भी शुरू हो जाते हैं, उसका बच्चा उसके साथ। वो वक्त जिस वक्त मरने वाला कब्र में ज़िंदगी भर के सवालों का जवाब दे रहा होता है ना, दुनिया में अमूमन डिस्कशंस और बातें, हाथों में तस्वीरें, सामने सुपारे खुले हुए और साथ साथ कमेंट्स, कान हर तरफ रखे हुए हैं, देख हर एक को रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो हमें नज़र आ जाए। और उस वक्त वो कब्र में वो 3 सवालात जिसके लिए ये हकूकुल्ला हैं, उसका जवाब दे रहा होता है कि मन रब्बू का, मर रसूल का, मा दीनु का। कब्र में जाया हुआ शख्स उन सवालों के जवाब दे रहा है, ये सब हकूकुल्ला है। कब्र के सवालों में इंसानी मामलात नहीं पूछे जा रहे, वरना तो कब्रों की तलखी इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती तो समझ आती है उसका मुकाम आगे जाके है। तो आपका मेरा अपने लिए ये सवाल होना चाहिए, ज़िंदगी बहुत बड़ी हकीकत है, मजाक नहीं है, इट्स नॉट अ फन, इट्स नॉट अ जोक। हम हर वक्त मूड अच्छे में, फ़न, मज़ा, इन्जॉयमेंट, उसकी बात, उसकी बात, उस पर कमेंट, उस पर बात, क्यों भाई? हमें मरना याद नहीं है। कल एक दर्स हुआ फैसलाबाद में फ़िक्र आख़रत, उसमें एक जुमला बोला था कि क्या मैं अपने इल्म आख़रत को फ़िक्र आख़रत तो नहीं समझती? यानी मुझे कहने की इजाज़त दीजिए, बहुत सारे लोग अपने इल्म आख़रत को फ़िक्र आख़रत समझे बैठे हैं। माजरत के साथ फ़िक्र कोई नहीं है, सिर्फ इल्म है कि मरेंगे तो मर के आगे जाएंगे। फ़िक्र आख़रत होती है तो वो ज़र की तरह इंसान अपने गाल ज़मीन पर रख देता है जवाबदेही के एहसास से। फ़िक्र आख़रत होती है किसी के बारे में आधी ज़ुबान से बात नहीं करता, क्योंकि मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैही रक़ीबुन अतीद। तो हम सब अपने बारे में इस वक्त सोच रहे हैं। इसके बाद दूसरी चीज़ है हकूक़ुल इबाद, कर्ज़, अमानत, वरासत की तकसीम और इसकी अदायगी वगैरह। हकूक़ुल इबाद में वालदैन के हकूक़ और शोहर के हकूक़ बहुत अहम हैं। अपनी वसीयत तहरीर करें 3 दिन रात से पहले पहले, यानी हम अपनी मौत के लिए जो तैयारी में इकदामात करें उसमें इंसानी मामलात में एक तो जनरल सवाल ख़ुद से पूछिए। मुहासबे के नुक्तों में बात करना बहुत ही मुअस्सर होता है। क्या मैं इंसानी मामलात में एहतियात पसंद हूँ? क्या मैं अल्लाह के बंदों के हक अदा करने में केयरफुल हूँ? क्या मैं अपने हर रिश्ते के नाते से अपने आप को सुरखरू महसूस करती हूँ? कल बेटी होने के नाते से लेकर जो पहला रिश्ता जुड़ा इस दुनिया में आने के बाद किसी से, वो माँ और बाप के साथ था, और शायद मरते दम तक आप में से कोई नानी, दादी, सास और इससे भी ऊपर के रिश्तों पे पहुँच चुकी हूँ। तो सवाल कीजिए, क्या अपने बचपन से लेकर अब अपने बच्चों के साथ जो मेरे रिश्ते जुड़े हुए हैं, मैं उसका सही हक अदा करती हूँ? बीवी होने के नाते क्या मैं सुरखरू हो जाऊँगी? आज जाके मियाँ जी से पूछिएगा, क्या आप मुझे बताएं कि इस पर्चे में मुझे कितने नंबर मिलेंगे? और पूछिए अपने प्यारों से, देखिए बड़ा मुश्किल है दुनिया में। हम तो कहते हैं नाक नहीं रहती, इतना डरते हैं रिश्तेदारों से, वल्लाह ही इतना अल्लाह से डरे होते तो कुछ बन चुका होता। हमारी हिचकी मौत के फरिश्ते को देख के क्या बनेगी जो हम रिश्तेदारों से के खौफ से डरते हैं। ठीक है, अच्छी बात है इज़्ज़त, प्यार, मोहब्बत, मुखलिस होना, उनके हक में अच्छे रहना, लेकिन याद रखिएगा क़यामत के दिन कंतरा यानी हकूक़ुल इबाद में मुख्तसर वक्त में अगर मैं सिर्फ़ एक बात सुना दूँ ना, तो मेरे लिए वो मुकाम कंतरा है। जन्नत और जहन्नम के बीच में एक पुल है जिसको पुल सरात कहते हैं। ये जहन्नम और ये जन्नत, पुल सरात से हर एक ने एक ही रूट पे निकलना। वाइम मिन कुमिल्ला वारी दुहा, ज़ाहिर है कि जो निकलेंगे पहले जन्नत नहीं जहन्नम है। जहन्नम वालों के लिए तो पकड़ा सीधा पकड़ के फेंक दिया, उनका तो उस मामला सीधा। सवाल है हम जन्नत के तकाजा करने वालों का। अल्लाह उस जहन्नम के ऊपर एक पुल रखेंगे और उस पुल से जन्नती भी आएंगे, नबी भी आएंगे, वली भी आएंगे, पैगंबर भी आएंगे, कुतुब और गौसिया सारे आएंगे और हर एक अपने आमाल के मुताबिक उसमें से गुजरेगा। पढ़िए वजाहत सूरह मरियम की आयत है, जाके उसकी तफसील पढ़ लें। पुल सरात क्या है? इकबाल गिलानी साहब की बुक है कि क़यामत का बयान, सिर्फ पुल सरात पे एक पूरा लेक्चर मौजूद है, जाके सुन लीजिए। लेकिन इस वक्त बात सारे की नहीं कर रही, आप सोचिए मेरे लैपटॉप का सिर है, आप यहाँ से ये मैदान हशर है, आप इधर से उठ के इधर आते गए यहाँ, कई तो गिर गिर के अंदर जहन्नुम में गिरेंगे ना। नहीं, आप बच गए, अल्लाह आपको मुझे बचाते, आराम से बचते गए, यहाँ ये ख़त्म हो रहा है, इधर जन्नत है। इस मुकाम का नाम है कंतरा, काफ नून तोय रहा, और कंतरा पर जाकर इंसानी मामला तुलेंगे। सारी चेकिंग हो गई, एयरपोर्ट को सोचिए ना, यहाँ से आपने बैगेज दिया, बोर्डिंग पास लिया, सामान उठा उठा के फिरे, यहाँ से सिक्योरिटी से गुजरे, फिर आपको यहाँ ये दरवाज़ा है जहाँ आप गेट के में बैठे होते हैं जहाज़ में जाने के लिए, सारी चेकिंग्स क्लियर है। जहाज़ में जाने से पहले एकदम आपका नाम अनाउंस हो, कभी सुने हैं लोगों के नाम बोलते हैं, जान निकल जाती है लोगों की, फलां साहब काउंटर से रब्ता करें। ये कंतरा पे आकर लोगों ने मेरे आपके नाम लेने हैं, ठहर जाओ, रिश्तों भी इसको नहीं जानने देना, भाई खैर है ये इसके ऊपर कुछ हक निकल आया, कोई आ रहा होगा, इसने मुझे गाली दी, कोई कहेगा इसने मेरी गीबत की, कोई कहेगा इसने ताना दिया, कोई कहेगा मेरे भाई थे विरासत में हिस्सा नहीं दिया, कोई कहेगा इसने मेरा हक महर नहीं दिया। यहाँ खड़े होकर बंदा खाली हाथ किया जा रहा है और सारा सामान तो पीछे, देखिए ना, सामान तो सारा वो ले लेते हैं, आप तो अपने हाथ के छोटे से पर्स में, अब यहाँ दूँ तो क्या दूँ? फिर वो कहेंगे नहीं किया दो, वो जो तुम्हारी डिपॉजिट सामान कह दो, वो सामान बैगेज तुम ले जाओ, वो तुम ले जाओ। और हदीस में कि एक शख्स जो पहले नेकियां लिए बैठा था उस पर दूसरों के गुनाह डलते रहेंगे और वो गुनाहों की वजह से वह फंसा जाएगा। तो बस सारी बात में से ये बात सुनाने का मकसद, केयरफुल रहें, एहतियात। बहुत हमने लोगों को हल्का समझा हुआ है, अल्लाह के मामले में तो बहुत डरते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इंसानी मामलों में और ख़ास तौर पर जब दूसरा शख्स हमारे बराबर का ना हो, मासियाँ, मेड्स, बेचारे ग़ुलाम नुमा छोटे छोटे मुलाजिम सारा दिन हमारी गालियाँ सुनते हैं, वल्लाह ही अल्लाह ना करे ऐसा हो कि कंतरा पे खड़े ही हमारे हक ले रहे, तो वहाँ फिर हम रोएं धोएं जो मर्ज़ी करें, आप जा नहीं सकते पीछे लेने के लिए। तो इंसानी मामलात में सोचिए। फिर आप देखिए कर्ज़, मैयत जो है कर्ज़ की वजह से मुअल्लक रहती है। अल्लाह के नबी ऐसे शख्स का जनाजा नहीं पढ़ाते थे जिसके सर पे कर्ज़ हो। तो आप और मैं अपने आप को चेक करें, लिख के रखिए, किसी का देना है लेना है लिख के रखिए, ज़िंदगी का नहीं पता, मौत का नहीं पता, गवाह रखिए। दो शर्तें हैं कर्ज़ की, लिखिए और मुद्दत का तयन कीजिए ताकि आपको पता हो कि किस वक्त क्या होगा। और जूँ ही आपकी जान निकले, अचानक अगर निकल गई, घर वालों को पहले वसीयत कीजिए कि हमारी मैयत उठाने से पहले ऐलान कर दो कि भी किसी का देना लेना तो हम ज़िम्मेदार हैं। फिर इसी तरह मानते हैं, आपको कोई देता है मुझे कोई देता है, लिख रखे, जान छुड़ाया करें, कभी मानते अपने हाथ में ऐसे ही ना पकड़ लें। आपकी नीयत अच्छी है लेकिन दूसरों को तो पता भी नहीं था कि किसी की कोई चीज़ थी आपके पास। फिर सिर्फ विरासत की तकसीम, 3 दिन के अंदर ये मामला निपटा दीजिए। दिल भी नरम हुए होते हैं, सदमा भी होता है, और दिल से दुनिया की हकीकत ऐसे कह लीजिए कि बेकैफ सा हो जाता है ना बंदा, बेइंसाफी नहीं होगी। वक्त का रेट, वक्त की कीमतें लगाकर बहनों भाइयों को रुख्सत कीजिए। हमारे कल्चर में मैं अपने एक ऐसे केस को देखकर कह सकती हूँ, 30 साल से मैयत तो कब्र में पता नहीं किस साल में हो गई, लेकिन अभी हकदारों को हक नहीं मिले। और बाद में झगड़े किन में पड़ते हैं, वो माँ जायों में, माँ जाया समझते हैं जो एक माँ के पेट में रहते हैं। वो कहते हैं घर तब इतने का था, उतने का हो गया। कोई कहता है इसकी तो वैल्यू बढ़ गई, उसकी बढ़ गई, नामों में लिख दिया था, कागज़ों में लिख लिया था। वल्ला ही फरिश्ते तो पता नहीं वहाँ क्या सोचते होंगे, इस दुनिया में उस मरने वाले का नाम बदनाम हो जाता है औलादों की वजह से। 3 दिन के अंदर ख़त्म कीजिए इस मामले को, और विरासत की बांट, इल्मुल फ़राइज़, अल्लाह ताला आपको मुझे इसको सीखने की तौफीक अता फरमाए, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिए कि वसीयत करना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन अगर आप किसी को कुछ देना लेना चाहते हैं तो वसीयत लाजमी है, ठीक है, ये भी उसी में जवाब आपको मिलेगा। उसके बाद आप देखिए कि ये तो हैं एक्टिविटीज़। इस वक्त हम सिर्फ एक मुख्तसर से सेशन में बैठे हैं, चंद दुआएँ जो दुनिया और आखरत में आपके मेरे, और स्पेशली आप सब जानते हैं कि आप जिस घर में बैठे हैं तो कुछ अर्सा गुजर गया, हालांकि आज की महफिल का इस नाम से मुनक्कद नहीं किया जाना जायज़ कि हम उनके लिए बैठे हैं, दुआ तो हर वक्त कर सकते हैं ना। देखिए क्या बच्चों को, माँ बाप के लिए दुआ करने के लिए लोगों को जमा करने की ज़रूरत है, एहतमाम की ज़रूरत है? बेटियों को माँ का गम भूल जाता है 3 दिन के बाद, या बेटे भूल सकते हैं? ये तो सारी उम्र के रिश्ते हैं, ठीक है। तो आज की महफिल को उस नाम से मंसूब ना करिए, लेकिन मेरी भी आज ही मुलाकात हुई है सिस्टर समीना से उसके बाद, और रमज़ान में गालिबन जो डेथ हुई इनकी सास की, तो हम उनकी उस जाने को दुआओं की सूरत में इस नियत से थोड़ा सा हम दुआएं मांगेंगे कि चूँकि ये करीबी सदमे से गुज़रे, उनके जाने से हमें अपना जाना याद आ जाए, और अल्लाह से दुआ करेंगे कि आज की इस महफिल में हम जो अच्छी बात सीखें इसका अल्लाह ताला अच्छा असर, उसकी जज़ा हमारी उस मांग को कब्र में अता फरमाए जिनके बेटे के घर में ये सब कुछ आज हो रहा है। कोई भी नेकी कर लेना तो अपने जाने वालों के लिए नियत कर सकते हैं, और माँ बाप के लिए तो कहने की भी ज़रूरत नहीं है, बच्चे जो करते हैं उनको फ़ायदा होता है, ठीक है। और ये सोच लीजिए कि आज की रात हम कहाँ होंगे। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सबसे पहले देखिए दुआओं में रात को सोते वक्त की दुआएं और सुबह को उठने की दुआएं। रात को सोने की दुआ सबको आती है ना, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। आज सोएंगे रात को इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, एक काम कीजिएगा, जब बिस्तर पे लेटकर ये दुआ मांगेंगे तो अपनी मौत को याद करेंगे, क्योंकि अल्लाहुम्मा ए अल्लाह बिस्मिका तेरे नाम के साथ अमूतू, मैं मरता हूँ वाहिया और जिंदा होऊंगा। हर रात आप पर मैं बिस्तर पे लेटने के वक्त अपने कब्र में लेटने को याद करते हैं। और कुरान कहता है तुम्हें अल्लाह दो मौतों में से एक ज़िंदगी फिर दे के उठा लेता है ना, तो रात को सोते वक्त मौत को याद करना। क्या पता सुबह उठेंगे नहीं। हमारी बहुत ही अच्छी अजीज़ हैं, दोस्त हैं, चौड़े चकले, उनके हस्बैंड चलते फिरते कमरे में सोते थे अपने, और सुबह उठ के चाय मांगते थे, कहती चाय नहीं मांगी। तो फिर इन्होंने कहा नहीं भी नहीं होगी, 8-9 बज गए, कोई नीचे मिलने आया, फलां साहब को बुला दो, दरवाज़ा नॉक किया, नॉक ही नहीं खोल रहे। और जब खोला तो पता चला वो तो डेथ हो चुकी उनकी बिस्तर पे, रात सही सोए, किसी के वहम में भी नहीं था, जवान शख्स। तो किसको पता कि आज सुबह हमने उठना है। ठीक है, फिर सुबह उठते क्या कहते हैं हम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना वइलैहिन्नुशूर। सारी तारीफ़ें उस ज़ात की हैं जिसने हमें ज़िंदा किया मरने के बाद, और आखिर उसी की तरफ वापस जमा होना। क्या पता चला सोते वक्त मौत और उठते वक्त कब्रों से उठना, ये है आपकी मेरी असल। हर रोज़ सुबह उठकर सबसे पहले इस बात का शुक्र अदा किया करें कि हम जिंदा उठे हैं, किसी और को हमें नहीं उठाना पड़ा। फिर इसी तरह कुछ दुआएं हैं जो मौत की याद दहानी के लिए बहुत सारी किताबों की दुआओं में मिलती हैं, उनको याद करेंगे। और ये दुआएं ऐसी खूबसूरत दुआएं कि जो आपको मुझे अपनी इस्लाह की तौफीक देंगी। देखिए जब आप और मैं मर जाएंगे ना तो हम कुछ कर तो नहीं सकते ना, बस मैं कहूँ कि अल्लाह मरने के बाद मेरा अखलाक अच्छा कर दे, इज़ इट पॉसिबल? नहीं होगा। अल्लाह ताला मुझे मेरी नमाज़ों में खुशू डाल दे मेरी मौत के बाद। ये तो वही बात है कि बच्चा पेपर देने के बाद कहे कि मेरे पूरे नंबर आ जाएँ, नहीं आएंगे ना। आज कोशिश करनी है तो मैं करूँगी क्या कि ये हमारे पास कुछ दुआएँ हैं, मैं बोलती हूँ मेरे पीछे पीछे दोहरा ले, एक दफ़ा आपको याद हो जाएंगी, और फिर इसका उर्दू तर्जुमा साथ रखते हुए देखेंगे कि हर दुआ के अंदर हमें इंशाल्लाह अपनी इस्लाह का मौका मिलेगा। तो यही असल में अब यहाँ से ही दुआ है, और फिर इसके एंड पे हम लोग ख़ास तौर पे भी दुआ अपनी उस माँ के लिए करेंगे जो दुनिया से चली गई। तो दोहराइएगा मेरे पीछे, अल्लाहुम्मा जन्निबना मिन सूइल अख़लाक़ी वल आमाली वल अहवाई वल अदवाई। ये दुआ सुबुल सलाम हदीस नंबर 1408 है। तर्जमा देखिए, ए अल्लाह मुझे बुरे अखलाक, बुरे आमाल, ख्वाहिशात और बीमारियों से महफूज फरमा। सब कही आमीन। क्या पता यहाँ हम इतने लोगों का मिल के ये दुआ करना हमारा अखलाक अच्छा कर दे, हमारे आमाल अच्छे हो जाएं, हमारी ख्वाहिशात जो है वो सही रुख पे आ जाएं, और हम पता नहीं किस बड़ी बीमारी से बच जाएं। ठीक है, तो ये पढ़ लिए, अब आपने इसको अपने पास कार्ड रख लीजिएगा, बाद में इसको याद कीजिएगा।